हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कल वेद के पेरेंट्स की बरसी होने वाली थी, इस वजह से अक्षत परेशान था। वेद जानता था कि इस दिन से पहले उन सभी भाई बहनों का मूड अपसेट रहता था। वो उन्हें संभालना जानता था। अक्षत सबसे छोटा था। वो भले ही खुद को कितना लापरवाह दिखाने की कोशिश करे, पर सच यही था कि इस दिन पर वो इकलौता ऐसा था जो खुद को संभाल नहीं सकता था। अक्षत के पीछे वेद चौहान पैलेस में आया तो उसने खुद को बेसमेंट में कैद कर रखा था। वेद उसे समझा बुझाकर ऊपर लेकर गया और लंच कराया। इन सब के बीच वेद को पता चला कि शिवांशा को कल रिसेप्शन पार्टी में कपड़ों और गहनों की वजह से थोड़ी एलर्जी हो गई थी। वेद उससे बात करने के लिए गया। अनजाने में शिवांशा ने पूछ लिया था कि घर में किस चीज की तैयारी चल रही है, तो वेद का मन कड़वाहट से भर गया था। उसने शिवांशा को ताने देते हुए अपने माँ बापा की बरसी के बारे में बताया और वहां से चला गया था। वेद बातों बातों में हर बार शिवांशा को जता ही देता था कि देवराज और उसकी फैमिली की वजह से वेद की फैमिली बर्बाद हो गई। वहीं शिवांशा उसके जाने के बाद बैठकर रो रही थी। जिंदगी तो उसकी भी आबाद नहीं हुई थी। देवराज के कर्मों की सजा वो अब तक भुगत रही थी। शिवांशा ने अपना सिर पकड़ा तो उसमें तेज दर्द हो रहा था। उसने धीरे से कहा, काश 6 महीने जल्दी से बीत जाएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कल वेद के पेरेंट्स की बरसी होने वाली थी, इस वजह से अक्षत परेशान था। वेद जानता था कि इस दिन से पहले उन सभी भाई बहनों का मूड अपसेट रहता था। वो उन अपको संभालना जानता था। अक्षत सबसे छोटा था। वो भले ही खुद को कितना लापरवाह दिखाने की कोशिश करे, पर सच यही था कि इस दिन पर वो इकलौता ऐसा था जो खुद को संभाल नहीं सकता था। अक्षत के पीछे वेद चौहान पैलेस में आया तो उसने खुद को बेसमेंट में कैद कर रखा था। वेद उसे समझा बुझाकर ऊपर लेकर गया और लंच कराया। इन सबके बीच वेद को पता चला कि शिवांशा को कल रिसेप्शन पार्टी में कपड़ों और गहनों की वजह से थोड़ी एलर्जी हो गई थी। वेद उससे बात करने के लिए गया। अनजाने में शिवांशा ने पूछ लिया था कि घर में किस चीज की तैयारी चल रही है, तो वेद का मन कड़वाहट से भर गया था। उसने शिवांशा को ताने देते हुए अपने माँ बाप की बरसी के बारे में बताया और वहां से चला गया था। वेद बातों बातों में हर बार शिवांशा को जता ही देता था कि देवराज और उसकी फैमिली की वजह से वेद की फैमिली बर्बाद हो गई। वहीं शिवांशा उसके जाने के बाद बैठकर रो रही थी। जिंदगी तो उसकी भी आबाद नहीं हुई थी। देवराज के कर्मों की सजा वो अब तक भुगत रही थी। शिवांशा ने अपना सिर पकड़ा तो उसमें तेज दर्द हो रहा था। उसने धीरे से कहा, काश 6 महीने जल्दी से बीत जाएं और ये मेरी जान ले ले, ताकि ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए। अगर इन्हें ये लगता है कि मेरे मर जाने से इनके मम्मी पापा की आत्मा को शांति मिल जाएगी, तो ये काम पहले क्यों नहीं निपटा देते? क्यों 6 महीने का इंतजार कर रहे हैं? शिवांशा का मन भी गुस्से से भर आया था। वहीं वेद नीचे पहुंचा। उसने नीचे आकर आराध्य से कहा, मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ, वो घर पर आकर उसे चेक कर लेंगे। वन मोर थिंग, उसने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो तुम उसके लिए खाना भिजवाओगी? जी भाई, आराध्या ने जवाब दिया। वेद ने आगे कुछ नहीं कहा और फिर वो वहां से चला गया था। उसका मूड पहले से ज्यादा बिगड़ चुका था। ऐसे में आराध्या और अक्षत ने उसे रोककर कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। अक्षत ने वेद के जाते ही धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि उनके बॉडी पर चारों तरफ बटन लगे हुए हैं जो सब उनका मूड खराब करते हैं, और हम अनजाने में कोई ना कोई बटन प्रेस कर देते हैं। आराध्या ने प्यार से अक्षत के कंधे पर मारते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी जगह वंश होता तो तुम्हारे इस मजाक पर तुम्हें 2 बातें सुना चुका होता। तुम जानते हो भाई का मूड ऑफ क्यों है? खुद भी मूड सड़ाकर घूम रहे हो और उन्हें ताने मार रहे हो। चलो अब आओ, मेरी हेल्प करो। जी जरूर भाभी माँ, आप बस आदेश दीजिए, अक्षत ने ड्रामेटिक वे में कहा तो आराध्या हल्का सा हंस पड़ी थी। आराध्या ने अक्षत को बैठाकर सब कुछ समझाया कि उसे क्या करना है। उसे सब बताने के बाद आराध्या ने शिवांशा के लिए एक साड़ी निकाली। उसने रानी को अपने साथ ऊपर लिया ताकि साड़ी और खाने के साथ वो शिवांशा के पास जा सके। हमेशा की तरह शिवांशा बालकनी में खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। जैसे ही उन्हें उनके कदमों की आहट सुनाई दी, शिवांशा ने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ कर लिया था। आराध्या ने साड़ी वेद के कमरे में रखी और फिर रानी को वहां से भेज दिया था। उसने शिवांशा को आवाज लगाते हुए कहा, भाभी प्लीज अंदर आ जाइए, आप वहां धूप में क्या कर रही हैं? शिवांशा ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ओढ़ ली और वो आराध्या के पास आ गई। उसने आराध्या से जवाब में कहा, बस कुछ देखने के लिए उस तरफ गई थी। बहुत गलत बात है भाभी, भाई ने बताया कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। आप क्या चाहती हैं कि भाई हमें फिर से डांट लगाएं कि हम आपका ख्याल नहीं रखते? आराध्या ने प्यार से डांटते हुए कहा। शिवांशा को लगा कि उसकी वजह से आराध्या को डांट पड़ी है, तो उसने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा था, आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको डांट सुननी पड़ी। शिवांशा की मासूमियत देखकर आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, आप कितनी इनोसेंट हैं, भाई ने मुझे डांटा नहीं है, लेकिन आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल मैं ये खाना लेकर ये वाला छोड़कर जा रही हूँ और आप इसे खत्म करेगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, जब मेरा मन होगा तब मैं खुद आपको बोल दूंगी, शिवांशा ने जवाब दिया। और भूख क्यों नहीं है, आराध्या ने उसके मन की बात जानने की कोशिश की। जब उसे लगा कि शिवांशा कुछ बताने वाली नहीं है तो वो खुद ही पहल करते हुए बोली, जब नई नई शादी होती है तब कपल्स में छोटी मोटी अनबन होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना छोड़कर बैठ जाओ, भाई और आपके बीच झगड़ा हुआ है ना। शिवांशा को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, उसकी नजरें नीचे हो गई थीं। आराध्या ने उसका यही मतलब निकाला कि सच में वेद और शिवांशा का झगड़ा हुआ है। आराध्या ने अपने दोनों हाथों से शिवांशा को पकड़ा और बेड पर बैठाती हुई बोली, भले ही ओहदे में आप मेरी जेठानी लगती हैं, लेकिन उम्र में मुझे बहुत छोटी हैं। जहां तक आपकी एज लगती है, वेद भैया से आपका पहला रिलेशन रहा होगा, आपके लिए ये सब चीजें नई हैं, इसलिए आपको बता देती हूँ, लड़ाई होने पर लड़के कभी अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश नहीं करते। हाँ, कुछ गिने चुने रेयर ही आदमी होते हैं जो अपनी गलती को मानकर सॉरी बोल देते हैं। अगर आप ये सोच रही हैं कि वेद भैया आपको मनाएंगे तब आप अपना गुस्सा छोड़ेंगी तो भूल जाइए, वेद भैया का बिहेवियर बहुत मैच्योर है, इस तरह रूठना मानना वो नहीं करने वाले हैं, उन्हें ये सब चाइल्डिश लगता है। ठीक है, तो फिर मैं सॉरी बोल दूंगी, शिवांशा ने धीरे से कहा। उसकी ये मासूमियत देखकर कई बार आराध्या हैरान रह जाती थी। उसने कहा, अब इतना भी इनोसेंट नहीं होना कि आप जाकर सॉरी बोल देगी, सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, दूसरा अगर नाराजगी है भी तो वो शब्दों से बताइए, इस तरह चुप रहेंगी तो कैसे होगा। मैं आपकी कही बात का ध्यान रखूंगी, शिवांशा ने उसे टालने के लिए कहा। पूरे घर में आराध्या और अक्षत ही थे जो उससे ठीक से बात करते थे या उसे पसंद करते थे। अक्षत को शिवांशा से बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन आराध्या उसके साथ घुलने मिलने की पूरी कोशिश कर रही थी। आराध्या को नीचे काफी काम था, इसलिए उसे जाना था। जाने से पहले उसने अपने साथ लाई साड़ी को शिवांशा को देते हुए कहा, कल माँ और पापा की बरसी है, हर बार वेद भैया पूजा में अकेले बैठते हैं, लेकिन इस बार आप उनके साथ बैठने वाली हैं, ये साड़ी पहन लीजिएगा। लेकिन मैं कैसे, शिवांशा हड़बड़ा गई थी, वेद तो उसके मम्मी पापा की फोटो तक को उसे छूने नहीं देता था, यहाँ तो बात उनकी बरसी की पूजा की थी। शिवांशा कहीं ना कहीं खुद भी यही समझती थी कि उसे इस पूजा में बैठने का कोई हक नहीं है। आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, पूजा में हमेशा पति पत्नी साथ में बैठते हैं, वेद भैया ने शादी नहीं की तो अब तक पूजा मेरे और वंश के हाथों होती थी, लेकिन इस बार की पूजा आप और वेद भैया करेंगे, हमने तैयारी भी उसी हिसाब से की है, आराध्या ने उसे समझाया और साड़ी देकर वहां से चली गई थी। शिवांशा अच्छे से जानती थी कि ये साड़ी देकर आराध्या ने उसके लिए एक नई मुसीबत ही खड़ी की है, अगर उसने गलती से वेद के सामने इस बात का जिक्र भी कर दिया तो वो गुस्से में फिर से उसके ऊपर फट पड़ेगा। शिवांशा वहां साड़ी को लेकर कश्मकश में खड़ी हुई थी, तभी रानी वहां आई। उसने शिवांशा से कहा, चलिए भाभी नीचे चलते हैं, डॉक्टर आपको देखने के लिए आ गए हैं। लेकिन मैं ठीक हूँ, सुबह आराध्या भाभी ने मुझे दवाइयाँ मंगवा दी थीं, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है, शिवांशा बोली। ये बात तो आप वेद भैया को जाकर कहिए, उन्होंने ही डॉक्टर को बुलाया था, रानी ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा।
वेद के आगे तो खुद शिवांशा कुछ नहीं बोल सकती थी, तो फिर रानी क्या ही चीज़ थी। शिवांशा ने फिर कोई बहस नहीं की और रानी के साथ नीचे लिविंग रूम में पहुंची। लिविंग रूम में जाकर उसने देखा कि एक लेडी डॉक्टर खड़ी हुई थी। अपने घर में फैमिली डॉक्टर के बजाय एक लेडी डॉक्टर को देखकर वो सब हैरान थे, लेकिन शिवांशा समझ गई थी कि ये सब वेद ने उसके कंफर्ट के लिए किया है। शिवांशा को देखते ही डॉक्टर ने बाकी लोगों को कहा, प्लीज आप सब बाहर चले जाइए, मुझे चेक करना होगा कि इन्हें रैशेस कहाँ कहाँ हुए हैं। डॉक्टर के कहने पर सब कमरे से बाहर चले गए थे और रूम का दरवाजा भी बंद हो गया था। उनके जाने के बाद डॉक्टर ने शिवांशा से कहा, मिसेस चौहान, ऐसा कीजिए कि आप अपनी साड़ी निकाल दीजिए। अगर आपके पास कोई शॉर्ट ड्रेस या कंफर्टेबल लूज ड्रेस हो तो वो भी पहन सकती हैं। मुझे चेक करना होगा कि रैशेस कहाँ और किस हद तक हुए हैं। उसकी बात सुनकर शिवांशा बुरी तरह घबरा गई थी। डॉक्टर बस अपना काम कर रही थी, लेकिन किसी के सामने इस तरह कपड़े निकालकर खड़े होना शिवांशा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। नहीं, मैं ठीक हूँ डॉक्टर, प्लीज आप जाइए, मुझे कोई चेक नहीं करवाना है, शिवांशा ने घबराकर जल्दी से कहा। आर यू ओके मिसेस चौहान, आई मीन आपका बिहेवियर मुझे थोड़ा नॉर्मल नहीं लग रहा है, डॉक्टर ने उसे घूरते हुए पूछा। आज से पहले उसने कभी किसी पेशेंट को इस तरह बिहेव करते नहीं देखा था। उसे एक पल के लिए लगा कि शिवांशा अनकंफर्टेबल हो गई है। कुछ पल रुककर डॉक्टर ने हल्के प्यार से कहा, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, अगर आपको कपड़े नहीं निकालने तो मेरे पास तरीका है, मैं नॉर्मली टच करके देख लेती हूँ। नहीं, हाथ नहीं लगाना मुझे, मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा, शिवांशा ने कांपती आवाज में कहा। वो डॉक्टर से दूर खिसकने लगी थी। डॉक्टर ने भी फिर उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया और कंफर्टेबल करने के लिए कहा, ठीक है, आप खुद बता दीजिए। अंदर के साइड थोड़ा ज्यादा एलर्जी है, पर सुबह जो दवाई दी थी उसके बाद ठीक हो रहा है, शिवांशा ने बताया। डॉक्टर ने उस मेडिसिन को देखा, फिर कुछ और मेडिसिन देने के बाद वापस अपनी गाड़ी में आ गई थी। शिवांशा का बिहेवियर देखकर उसने मन ही मन कहा, अजीब पागल लड़की है, ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे मैं कपड़े निकालने के बहाने न जाने उसके साथ क्या कर दूंगी। मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है तो अपने पति के साथ कैसे बर्ताव करती होगी, और पति छोड़ो, कल को बच्चे होंगे तो फिर क्या डॉक्टर को अपनी डिलीवरी नहीं करने देगी ये। डॉक्टर गाड़ी में बैठी शिवांशा को भला बुरा कह रही थी, तभी उसके पास वेद का कॉल आया। डॉक्टर ने कॉल रिसीव किया और नाराजगी जताते हुए कहा, इससे पहले कि आप अपनी वाइफ के हेल्थ के बारे में अपडेट लें मिस्टर चौहान, मैं बता देती हूँ कि वो लड़की बहुत अजीब है। इस तरह की बात मैंने कभी किसी से नहीं की और मुझे कहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या वो आपके पास आने देती है? उसने मुझे ठीक से चेकअप तक नहीं करने दिया। मैंने अपनी तरफ से डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, आई होप कि वो दवाई उस पर असर कर जाए, वरना कल को आप उसे किसी हॉस्पिटल भी लेकर जाओगे तो वो डॉक्टर को चेक करने के लिए हाथ तक नहीं लगाने देगी। ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे न जाने मैं हाथ लगाने के बहाने उसके साथ क्या कर दूंगी। डॉक्टर ने वेद को अच्छा खासा सुना दिया था। वहीं इस वक्त वेद अपने केबिन में बैठा था। उसने शांत लहजे में कहा, उसके किसी डॉक्टर के साथ पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है डॉक्टर, आई होप कि आप समझेंगी, बाकी थैंक यू सो मच जो आप मेरे कॉल करने पर मेरी वाइफ को देखने के लिए घर गईं। डॉक्टर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने कॉल कट कर दिया था। वहीं वेद शिवांशा की वजह से और परेशान हो गया था। आखिर ऐसे क्या हुआ है उसके साथ जिसके बाद वो इतनी डरी हुआ रहती है? वो तो यहाँ राजावत फैमिली के पास रहती भी नहीं थी। अरमान उसे अपनी बहन बोलता है, अरमान के साथ आराम से बात भी कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा वो अंकुश से 2 या 3 बार मिली होगी। क्या इतनी सी बात में उसने उसे इतना बड़ा ट्रॉमा दे दिया कि वो किसी औरत तक को टच नहीं करने देती है? वेद ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से शिवांशा थी जो उसे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। वेद शिवांशा को जितना उसके हाल पर छोड़ने की कोशिश करता उतना ही कुछ ऐसा हो जाता कि उसे शिवांशा की परवाह करनी ही पड़ती। वहीं चौहान फैमिली में बरसी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। रात के वक्त काम खत्म करके जब वेद घर पहुंचा तो उसके बेड पर एक साड़ी पड़ी हुई थी। ये वही साड़ी थी जो आराध्या ने शिवांशा को दी थी। हद है, मैंने उसे अपने कमरे तक आने से मना किया है और वो अपना सामान मेरे बेड पर रखकर चली गई है। अजीब बेवकूफ लड़की है, वेद गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला और साड़ी को लेकर सीधा शिवांशा के कमरे में पहुंच गया था। उसके अचानक कमरे में आने पर शिवांशा जल्दी से बेड से खड़ी हुई तो वेद गुस्से में वो साड़ी बेड पर फेंकते हुए बोला, आगे से अपना कोई सामान मेरे कमरे में नहीं रखोगी तुम, और मेरे रूम में क्यों गई थी? तुमने मेरे सामान को टच तो नहीं किया? ये साड़ी वहां क्या कर रही थी? मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा यकीन कीजिए, आराध्या भाभी ने मुझे दी थी और कहा कि कल की पूजा में मुझे ये साड़ी पहननी है, शिवांशा डरते हुए सब कुछ उसे बता दिया था। वहीं पूजा में शिवांशा के साथ बैठने के नाम से ही वेद के चेहरे के भाव सर्द होने लगे। सपने में भी मत सोचना कि मेरे माँ पापा के कातिल के अंश को मैं उनकी पूजा के आसपास भी फटकने दूंगा, मैं तुम्हारा साया तक नहीं पढ़ने दूंगा मैं, इस पूजा में बैठना तो दूर की बात है, वेद ने ठंडी खतरनाक आवाज में कहा और वहां से बाहर चला गया। जहां सब ये सोचकर बैठे थे कि पूजा वेद और शिवांशा के हाथों होगी, वहीं वेद ने शिवांशा को साफ मना कर दिया था कि वो इस पूजा में नहीं बैठेगी। वेद ने मना तो कर दिया था, लेकिन उसकी सभी फैमिली के सामने उनके रिश्ते का सच छुपाते हुए वेद को शिवांशा को इस पूजा से दूर भी रखना था। डैश 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 डैश, देखते हैं वेद कैसे मैनेज करता है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं। और प्लीज इतना आलसी मत बनिए, एक मिनट भी नहीं लगता एक रिव्यू लिखने में।